यशाया अध्याय 25, यशाया अध्याय 25 पद 1। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर, मैं तेरी आराधना और स्तुति करूंगा। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। यीशु ने कहा, प्रकाशित वाक्य 3:14, मैं विश्वास योग्य और सच्चा गवाह हूं। यीशु ने इन घटनाओं के होने की पुष्टि की थी। वो जो विश्वास योग्य और सच्चा है, उसने कहा था, और उसकी भविष्यवाणी यशया से अलग नहीं थी। उसने भी यही घोषणा की थी, वो तो विश्वास योग्य और सच्चा है। परमेश्वर ने दानियल से कहा था, इस भविष्यवाणी पर छाप लगा दे, क्योंकि ये सच्ची है, अर्थात ऐसा होकर ही रहेगा। यहां यशाया परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए उसकी स्तुति कर रहा है। यशाया उसके नाम का धन्यवाद दे रहा है, उसके आश्चर्य कर्मों के लिए, उसकी युक्तियों के लिए वो उसकी स्तुति कर रहा है। यशाया अध्याय 25 पद 2-4 तक। तूने नगर को ढी और उस गढ़ वाले नगर को खंडर कर डाला है। तूने परदेशियों की राजपुरी को ऐसा उजाड़ा कि वो नगर नहीं रहा, वो फिर कभी बसाया न जाएगा। इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे, भयंकर अन्य जातियों के नगरों में तेरा भय माना जाएगा, क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए गढ़ और जब भयानक लोगों का झोंका भीत पर भौचार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उसकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। परमेश्वर सर्वदा ही और आज भी दीनों के लिए गढ़ और दरिद्रों के लिए शरण है, वो आंधी में शरण स्थान है। हम कितनी बार आंधियों में से उसे खोजकर उसमें शरण पाते हैं। वो गर्मी में छाया का स्थान है, वो उसकी स्तुति कर रहा है कि वो गर्मी में छाया और तूफानी झोंकों में शरण देता है। इसका संदर्भ महाक्लेश से है कि परमेश्वर अपनी संतानों का शरण होगा। यशाया अध्याय 26 पद 20। हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद कर लो, थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो। मैं विश्वास नहीं कर सकता, ना ही मैं विश्वास करता हूं कि पृथ्वी पर ऐसे विनाश के समय कलीसिया यहां पर होगी जिसके बारे में यशाया भविष्यवाणी कर रहा है। मैं तो ये मानता हूं और आश्वस्त भी हूं कि मेरे प्रभु के पास मेरे लिए उत्तम योजना है। यीशु ने कहा, लूका अध्याय 21 पद 36, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र सामने खड़े होने के योग्य बनो। वही आंधी में शरण और तपन में छाया होगा। यशाया अध्याय 25 पद 5-8 तक। जैसे निर्जल देश में बादल की छाया से तपन ठंडी होती है, वैसे ही तू परदेशियों का कोलाहल और क्रूर लोगों का जय जयकार बंद करता है। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसी जेवनार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाक मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाक मधु होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब अन्य जातियों पर लटका हुआ है, उसे वो इसी पर्वत पर नाश करेगा। वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। यदि हम इस समय यशाया का अध्ययन नहीं कर रहे होते तो मैं आपसे पढ़कर पूछता, वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, ये वचन कहां है? तो आप तुरंत कहते, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 में पद 55 और 56। हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? यीशु ने मृत्यु, कब्र और नरक पर विजय प्राप्त की है। यीशु के पुनरुत्थान के विषय में पौलुस कहता है, वो हमारे पुनरुत्थान की आशा है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 20, 35 से 38, 42 से 44 और 40। परंतु सचमुच मसीहा मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। पद 35 से 38। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं? हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वो ना मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है ये वो देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। पद 42 से 44। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। पद 40। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। वो इन्हीं विषयों पर चर्चा करते हुए आगे कहता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 51 और 52। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। उस समय ये कथन पूरा होगा, हे मृत्यु, तेरा डंक कहां है? हे कब्र, तेरी विजय कहां? मृत्यु का डंक पाप था जिसे यीशु ने हटा दिया। ओ परमेश्वर का धन्यवाद करो जो हमें मसीह यीशु के द्वारा जयवंत बनाता है। इस प्रकार हमारे पास ये ईस्टर का नारा है। यहां सब कुछ मसीह यीशु के पुनरुत्थान से जुड़ा हुआ है। इसी से हमें महिमा की आशा प्राप्त है। उस दिन मृत्यु जयवंत न होगी, वो निगल ली जाएगी। मसीह यीशु के पुनरुत्थान में वो निगल ली गई थी। परमेश्वर आंसुओं को पोंछ डालेगा। यदि मैं इसे पढूं तो आप जरूर कहेंगे, ये वचन तो प्रकाशित वाक्य से है कि नहीं? हां हां, सातवां अध्याय है और परमेश्वर आंसुओं को पोंछ देगा। ये वचन अध्याय 22 में फिर से है, परमेश्वर आंसू पोंछ डालेगा। प्रभु के राज्य का वो महादिन और अपनी प्रजा की नाम धराई सारी पृथ्वी पर से सदा के लिए दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। यशाया अध्याय 25 पद 9। और उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं, हम प्रभु के आने की प्रतीक्षा करते रहे हैं कि वो अवश्य आएगा। देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वो हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे, क्योंकि इस पर्वत पर यहोवा का हाथ सर्वदा बना रहेगा और मोआब अपने ही स्थान में ऐसा लताड़ा जाएगा जैसे धूरे में पुआल लताड़ा जाता है, और वो उसमें अपने हाथ इस प्रकार फैलाएगा जैसे कोई तैरते हुए फैलाए, परंतु वो उसके गर्व को तोड़ेगा और उसकी चतुराई को निष्फल कर देगा, और उसकी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहरपनाओं को वो झुकाएगा और नीचा करेगा, वरन भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अध्याय 24 का महाविनाश और महाक्लेश और उसके अध्याय 25 में प्रभु के राज्य के युग का विजय उल्लास। अध्याय 26 में इसराइल पर परमेश्वर के कार्यों का पुनस्थापन है। ये दुर्भाग्य की बात है कि इस विवरण को अध्यायों में विभाजित कर दिया गया है, परंतु वास्तव में ये एक ही है। मैं आशा करता हूं कि आप घटनाओं के क्रम को समझ रहे होंगे। पहले महाक्लेश, उसके बाद प्रभु के राज्य का आगमन, उसके बाद प्रभु की विजय और महिमावन, तब होगा परमेश्वर का अपने चुने हुओं के साथ असाधारण व्यवहार। ये बड़ा ही उत्साहवर्धक होता है। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य है। अध्याय 26 में हम परमेश्वर की प्रजा की पुनस्थापन में उसके महिमामय कार्यों को देखेंगे। भविष्यद् वक्ताओं ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि परमेश्वर फिर से उनके मध्य काम करेगा। मैं बाइबल से प्रेम रखता हूं क्योंकि वो सत्य वचन है। ये तो आप जानते ही हैं। आप ये भी जानते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ कहा है उसे किया भी है। यदि उसने अपना कहा पूरा किया है तो ये भी निश्चित है कि वो उस काम को भी करेगा जो उसने कहा कि वो करने जा रहा है। आप बाइबल को इस विश्वास से पढ़ सकते हैं कि ऐसा होकर ही रहेगा। यीशु ने कहा, मत्ती 24 अध्याय 35 पद, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। ये परमेश्वर के वचन की दृढ़ता है। आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर अपने जीवन की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आप सदा सुरक्षित रहे। परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं जाता, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। प्रभु आपके साथ हो और आपको सामर्थ प्रदान करे, और परमेश्वर का वचन आपके भीतर ज्वलंत अग्नि का सा हो, क्योंकि परमेश्वर आपको अपना सत्य प्रदान करता है, और आपका जीवन वचन से धुलकर शुद्ध हो जाए। आप प्रभु के साथ मधुर संगति में रहे और प्रभु आपको गवाही के और परमेश्वर की सेवा के अवसर प्रदान करें, यीशु के नाम में।